ओम शांति। आज की इस निशा की बेला में जो इस भट्टी का सुचारू रूप से 3 दिन से संचालन करते आए, ऐसे हमारी तृप्ति दीदी का सब एक हाथ की ताली से अभिवादन और स्वागत करते हैं। बाबा कहते हैं कि कोई विशेष आत्मा ऐसी होती है जो गुप्त होती है, और साकार बाबा कहा करते मुरली में कि जो विशेष रतन होता था तो बाबा भी उसको डिब्बी में रखता था। तो ऐसे ये भी आत्मा जब गीता दीदी का परिचय दे रहे थे तो कहते सभी अन्य बच्चों में गीता दीदी अनन्य है, और मैं तो कहते उनमें से भी तृप्ति दीदी एक अनन्य रतन ही है जो गुप्त में है और अभी तक प्रत्यक्ष हमारे दिल में नहीं हुए थे और इस भट्टी के संचालन द्वारा प्रत्यक्ष हुए। स्थान भी देखो ड्रामा की भावी अनुसार, आप भावनगर सेवा के लिए सेवारत हो और भावनगर में सागर है, तो भव सागर से सबको तृप्त करने वाली ये ज्ञान गंगा चारों तरफ ज्ञान से हर आत्मा को पावन करते करते और तृप्त करते करते हमारा भी सद्भाग्य जागा और हम भी तृप्त होने के लिए इस भट्टी के बहाने उनके और हमारे समीप का जो संबंध और कल्प पहले वाली जो रही हुई दूरियां खत्म करने का समय आना था तो आज आया। आप वैसे 40 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में चल नहीं रहे, लेकिन ज्ञान को अपने जीवन में समा करके बाबा को अपने बुद्धि बल द्वारा समझ के 38 ईयर्स से अपने इस जीवन को बाबा के बेहद सेवा में समर्पित कर दिया है, और वर्तमान में भावनगर सब जोन विसनगर ऊंझा कई बहुत बाबा के बड़े भवन बने हैं, चारों तरफ चक्रवर्ती बनकर के सेवाएं देते हैं, और कई बहने भी आपके पास से 12-13 सेंटर भी दीदी का निर्देशन में सुचारू संचालन चल रहा है। आप आर्ट और कल्चर विंग के गुजरात कोऑर्डिनेटर भी हैं। बहुत सारी विशेषताएं बाबा ने आप में भरे, इसलिए इस देह का नाम भी तृप्ति दीदी है। तो सचमुच में सबको तृप्त कर रही है, और आज सबका परिचय देते देते मैं तो अपने आप को इतना भाग्यशाली समझती जो सबका परिचय दे रही है, मैं उनका परिचय आप सबको अवगत करा रही। जैसे दादी जी अपने आप को भाग्यशाली समझती कि ब्रह्मा के तन में शिव आया और शिव और ब्रह्मा गुलजार दादी के तन में आया, तो जो सबका परिचय सबको अवगत करा रही हैं, तो मैं दीदी के परिचय से अपने आप को भी और आप सबको भी अवगत कराती, इससे अपने भाग्य को बहुत श्रेष्ठ समझती। ओम शांति।
ओम शांति। हम सब एक ही मार्ग के एक ही राह के राही हैं। सबको अपनी एक ही मंजिल पर पहुंचना है, लेकिन चल रहे हैं आगे पीछे। कोई इस रास्ते में आगे है, कोई बीच में है, कोई पीछे है। मंजिल है हमें संपन्नता को प्राप्त करना। ऐसे भी 9 बजा है, 9 का अंक पूर्णांक कहा जाता है। गीत में भी सुना कि हमें तेज गति से चलना होगा। दोपहर में भी सुनाया कि इसी गति से क्या हम समय पहले पहुंच पाएंगे। गति को बढ़ाने के लिए भौतिक रीति से विज्ञान ने बहुत साधन दिए हैं जो पहले नहीं थे। कहां भी आना जाना करना था तो पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में जाते थे, फिर मोटर कारें, घोड़ा गाड़ी आदि जो भी धीरे धीरे बढ़ते गए, और आज हम उस समय पर पहुंचे हैं कि जहां एक नेचुरल हो गया कि हम फास्ट साधन पसंद करते हैं। आज का जीवन ही फास्ट बन गया है, बल खाते हैं फास्ट फूड, उसका भी नाम ऐसे रख दिया है। कोई लोकल बस में जाना पसंद नहीं करेंगे, एक्सप्रेस बस में। जल्दी पहुंचना है, अगर धन से संपन्न है तो कहेंगे एरोप्लेन से जाएं, और उसमें भी कितने प्रकार के एरोप्लेन, एक प्रकार के नहीं। ये है विज्ञान की कमाल, साइंस ने हम ऐसे ऐसे साधन दिए जो सेकंड में हम सारे विश्व तक पहुंच पाते, टेलीफोन इंटरनेट आदि के माध्यम से, जो पहले नहीं थे। हमारा यज्ञ भी, बाबा के सेवा केंद्र भी, और आपके लौकिक घर भी, दिन प्रतिदिन साधन संपन्न बनते जाते हैं। जैसे जैसे साधन उपलब्ध होते जाते, वैसे धीरे धीरे हर एक बसाते जाते और उसके आदती बन जाते। नई पीढ़ी को तो यही एक आदत पड़ जाएगी, जैसे छोटे बच्चे कंप्यूटर नेचुरल, और हम इतने बड़े हुए बाद में कंप्यूटर देखा, और उन्होंने जन्म से ही देखा। तो आज दुनिया में इतने साधन नए नए निकल चुके हैं, और उन साधनों की विशेषता क्या रही, नए नए साधन जो निकल रहे हैं, कम खर्च, कम जगह, साइज भी कम, और ज्यादा उससे प्राप्ति। ऐसा है, इन विज्ञान का लक्ष्य, नए नए साधन जो बनते उसका ये लक्ष्य होता है। जो बड़ी एज वाले भाई है, उन्होंने देखा होगा कईयों ने कि पहले कितना बड़ा रेडियो आता था, इतना बड़ा, जैसे कल भी सुनाया, पहले टेप रिकॉर्डर कितना बड़ा था, जैसे ग्रामोफोन की एक ही थाली में, एक ही रिकॉर्ड में एक ही गीत बजता था, इतनी बड़ी थाली और एक ही गीत। आज विज्ञान भी साधनों को छोटा करते गए। आज छोटी से पेन ड्राइव में कितने गीत, कितने घंटों की रिकॉर्डिंग होती है, छोटा सा है। एक ही मोबाइल में क्या क्या है, मोबाइल तो है, साथ में गीत भी बजेगा, साथ में वीडियो शूटिंग भी करेंगे, फोटोग्राफी भी करेंगे, इंटरनेट भी होगा, कितना सारा एक में ही है, कितना छोटा सा। पहले टेलीफोन थे ऐसे वायर वाले, बड़े बड़े लंबे, यहां से वहां ले जाना तो बीच में लंबा वायर, फोन करना हो तो भी डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, एक्सचेंज में बुक कराओ, वेट करो, इमरजेंसी में लिखाओ या कॉमन में लिखाओ। इस प्रकार से साधन उपलब्ध थे, लेकिन आज विज्ञान ने सभी साधनों को छोटा करते गए, सूक्ष्म बनाते गए, और सूक्ष्मता के साथ साथ शक्तिशाली भी बनाते गए। जैसे कोई भी चीज जितनी शक्तिशाली होती है ना, उतनी वो सूक्ष्म होती है। बाबा भी कौन है, सर्वशक्तिवान, लेकिन है क्या, अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट। तो सूक्ष्म चीज छोटी, छोटी चीज शक्तिशाली। वैसे हम आत्मा अति सूक्ष्म, अगर आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे, ये साधना करेंगे तो शक्तिशाली बन जाएंगे। इतने बड़े शरीर के अभिमान में रहेंगे तो कमजोर होते जाएंगे, धीरे धीरे शक्ति कम होती गई। अभी हमें साधन और साधना का बैलेंस करना है। ज्ञान तो इतना आगे बढ़ गया, अभी हम कहां है, स्पीडी, सूक्ष्म, पावरफुल, ये जो विशेषताएं हैं वो हमारे में भरते गए हैं। बैलेंस माना संतुलन, बहुत बड़ी कला है। पहले गांव में या छोटे शहरों में वो नट रस्सी पर चलता था, हाथ में एक लकड़ी लेकर बैलेंस की कला दिखाते थे, सब देखने के लिए जाते थे, उसकी कमाई होती थी। बहुत बड़ी कला है, हम नहीं चल सकते, उसने ही ये कला को अपने में भरा है। तराजू, बैलेंस, तराजू को भी बैलेंस कहते हैं। दो पलड़े होते हैं, तो एक साधन एक साधना, दोनों समान होंगे तो बीच का कांटा जो है वो सीधा स्थिर होगा, एकाग्र होगा। एक भारी एक हल्का तो टेढ़ा होगा। जितनी एकाग्रता होगी उतनी हमारी आंतरिक शक्तियां विकसित होगी। पहले विनाश के लिए या लड़ाई के लिए युद्ध के मैदान में कितने बड़े बड़े साधन, कितने बड़े बड़े शस्त्र लेकर के जाते थे, कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी, कितना खर्च होता था। आज एक ही एटम बम उससे भी ज्यादा काम कर सकता, कुछ नहीं चाहिए। एटम में कितनी शक्ति, छोटा सा अणु। तो विज्ञान ने क्या किया, सारी बड़ी बड़ी विस्तार की बातों को सूक्ष्मता में ले गए। स्थापना के कार्य में हम सब बाबा जो गाइड कर रहे हैं वो भी क्या कहते हैं कि हमारे जो पूर्वजों की शक्ति वो भी सूक्ष्म शक्ति थी, लेकिन जैसे वृक्ष के विस्तार में बीज की शक्ति छिप जाती है गुप्त, वैसे कहीं ऐसा ना हो कि साधनों के विस्तार में हमारी सूक्ष्म शक्ति जो अलौकिकता है वो छिप न जाए। तो ये पहले साधन नहीं थे तो हम वो शक्ति यूज करते थे। जैसे आज का एग्जांपल, आज कैलकुलेटर आ गया, वो यूज करने वाले को वो पूछो कुछ मल्टीप्लिकेशन या प्लस माइनस तो तुरंत कैलकुलेटर चाहिए। जिन्होंने यूज नहीं किया और अभ्यास है गिनती करने का तो फट से गिनती कर सकते हैं। आज मोबाइल फोन नंबर हम सेव करते हैं तो याद नहीं रहता है, पहले लगाते थे तो बार बार लगाने से वो याद रह जाता था ना, इसलिए अभी हम वो तस्दी नहीं लेते हैं याद रखने की। बाबा के यज्ञ में भी शुरू में कोई इतने साधन नहीं थे जो आज है, थे इतने साधन नहीं, वो बिना साधन साधना करते थे। दादी जानकी हमेशा कहती कि हमें क्या चाहिए, तीन पैर पृथ्वी, बोलती थी न दड़ी थी न घड़ी थी, समझा, न डरी थी न गड़ी थी कारपेट नीचे बैठने के लिए, और हम साधना करते थे। उन्हों की साधना कैसी थी? उन्हों की बुद्धि जरा भी साधनों में नहीं थी। आज क्या है, वेनलोप के गद्दे हैं, सोफे हैं, कुर्सियां हैं, सब है, बुद्धि उसमें जाती। या ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए, चाहिए जहां है वहां साधना नहीं कर सकते, क्योंकि वही संकल्प उसमें ज्यादा चलते। हमारे संकल्प किसमें खर्च होते? चाहिए चाहिए में। इसलिए हम साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। ब्रह्मा बाबा संपन्न हुए झोपड़ी में बैठ करके तपस्या की थे, ऐसे कोई साधन नहीं थे। पहले कोई ना कमेंट्री थी, ना कोई ऐसे गीत अच्छे अच्छे बजते थे। आज टेप रिकॉर्डर ना हो, सीडी प्लेयर ना हो, तो कहेंगे योग कैसे लगेगा, पंखा नहीं है तो गर्मी लगेगी, योग कैसे लगेगा। तो ये बाह्य रीति से हमने स्वयं को ऐसे आदति बना दिया कि उसके बिगर चल नहीं सके, आधार हमारा वो बन गया। अभी ये आधार कैसा है? विनाशी है, परिवर्तनशील है। अगर आधार से, साधन से हम अटैच होंगे तो कोई भी चीज अटैच होती है, जैसे ये हाथ इससे अटैच है, ये बैंड होगा तो ये भी तो बैंड हो जाएगा ना। वो जॉइंट बच्चे कभी जन्म लेते हैं, फोटो देखते हैं, अभी एक को नहीं खाना है तो भी दूसरे को खाना है तो उसको खाना ही पड़ेगा, वहां बैठना ही पड़ेगा, क्यों? जॉइंट है। हम ऐसे डिपेंडेंट बन गए, आधार लेने वाले बन गए। बाबा कहते निराधार होकर तपस्या करो, कुछ न मिले तो भी इतनी लगन है, इतना महत्व है, इतना प्यार है जो बाबा से जुड़े रहे। जहां प्यार होता है वहां झोपड़ी भी महल लगेगी, सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन मिष्ठान लगेगी, क्यों? प्यार है। किससे? बाबा से। तो ये हमारी अंदर की बात है, अंदर से अगर भरपूर है, बाबा से अगर भरपूर होते जाते संतुष्ट है, कुछ नहीं चाहिए, या जो मिला उसमें संतुष्ट। आज यज्ञ में भी विघ्न है, कौन से किस लिए? पहले भी थे लेकिन बाहर के थे, विघ्न कौन से थे? संबंधियों के थे, कराची में जो भी शहर वालों के थे, सब विरोध करने वाले थे। फिर भी अंदर रहने वाले कैसे थे? अपनी मस्ती में मस्त थे, अपनी साधना में ही मस्त थे। क्या होगा, क्या करेंगे, कुछ भी चिंता नहीं थी। धीरे 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 बाहर के विघ्न कम होते होते फिर कहां घुस गए? अंदर आ गए। आज यज्ञ में जो विघ्न है बाहर के नहीं है, बाहर बड़ी अच्छी इंप्रेशन है, अभी तो बड़ा अच्छा प्रेस्टीज है संस्था की, यहां आने में भी गौरव अनुभव करते, पहले लज्जा अनुभव करते हैं। ब्रह्मा कुमारी में गए तो जैसे कोई खराब स्थान पर गए हो, किसी को बताते नहीं थे, आज फिर भी बताते, हम ब्रह्मा कुमारी में जाकर आए, वहां तो बहुत ऐसा था वैसा था, ये अनुभव किया। बाबा की प्रत्यक्षता भी साधनों से ही हो रही है, बाबा ने भी कहा साइंस के साधन खूब यूज करो, लेकिन कैसे? अटैच होकर नहीं, हाँ, न्यारे होकर, जैसे आगे सुना, उसको अपने जीवन का आधार, पुरुषार्थ का स्थिति का आधार नहीं बना दो। इसलिए आज के विघ्न वो अपने ही ब्राह्मण परिवार से है। सब पुरुषार्थ कर रहे तो भी सब एक दो के लिए विघ्न रूप है, कहेंगे फलाने के कारण मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, वो मेरे लिए माया है या विघ्न है या समस्या है, वो मेरे साथ ऐसा चले, हम ऐसा मांगते हैं, इच्छा रखते हैं, क्योंकि ऐसा चलेगा तो मेरी स्थिति बनी रहेगी शांति की या खुशी की, नहीं चलता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए क्या चाहते, मांगते, लेना फिर भी सहज है, देना बड़ा मुश्किल है। जब वो दत्तिकंप हुआ कच्छ में, तब कई करोड़पति थे, वो जैसे रोडपति हो गए तो उनको सहयोग देने के लिए सब जाते थे, खाना या कपड़े या जो भी, तो वो ले नहीं सकते थे, कहते थे हमने कभी लिया नहीं है, कैसे लेंगे, हमने तो सदा दिया है। भारतीय संस्कृति देने वाली, देवता, तो ये दाता की संस्कृति है, फिर भी हम एक दो से मांगते हैं। तो सहयोग दे तो मैं सहयोग दूं, अगर न दे तो क्या देंगे। मेरे बर्थडे पर गिफ्ट लेकर आए तो मैं ले जाऊं, चलो लेकर तो आए, अभी कितने की लाए उतने की मैं ले जाऊं, ये सब हम अंदर में सोचते या ऐसे करते भी है। फलाना मेरे घर आया, मैंने बहुत खातरी की, पूरा दिन मेहनत करके अच्छा भोजन बनाया, मैं उनके घर गई तो उसने पानी भी नहीं दिया। दोबारा वो आपके घर आता है, क्या करेंगे क्या करेंगे, माताएं खास, क्योंकि भोजन बनाना आपको है, पानी देंगे, भोजन बनाएंगे, फिर से अच्छा खिलाएंगे। तो ये सब बातें वह हमारे संस्कार स्वभाव है, जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हर एक की ये फरियाद है कि मैंने फलाने के लिए बहुत कुछ किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, घरों में यही फरियाद है, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, संबंधियों में भी ऐसे होता है, लेकिन उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जितनी इच्छा एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना दुख फील होगा, दर्द होगा। क्यों नहीं रखनी है, दुखी नहीं होना है, इसलिए क्यों नहीं रखनी है, क्योंकि जिसके प्रति रखेंगे उसका कोई प्लान नहीं है जो आपकी वो एक्सपेक्टेशन को पूरा करे, ऐसा कोई प्लान, डोंट केयर, वो तो उसके प्रति कुछ ध्यान ही नहीं है, और हम रख कर बैठे तो क्या होंगे, रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। इसलिए हमारी साधना कहो, तपस्या कहो, ये हो कि जो जैसे है वैसे हम उसको एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार करें। कोई रास्ता है ही नहीं, क्या करेंगे, कोई चॉइस है ही नहीं, यही करना होगा अगर खुश रहना है, सुखी रहना है, मन को एकाग्र करना है, अच्छी तरह साधना करनी है। तो करनी तो है, चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में ये सारी बातें हमें डिस्टर्ब कर देती है। वो बातें डिस्टर्ब करती और हम होते भी है, क्योंकि ये संकल्प नहीं किया है कि मुझे नहीं होना है। वो बल कितना भी करे मुझे नहीं होना है, ऐसा कोई प्रोग्राम इस कंप्यूटर में डाला नहीं है, इसलिए होते भी रहते। वो संस्कार बन जाता, फिर नए संस्कार भी बना सकते कि हमें अचल, अडोल, स्टेबल रहना है। इन्हें संस्कार वो हमें बनाना होगा। छोटी छोटी बातें हमें खुशी से दूर ले जाती, शांति से दूर ले जाती, तपस्या से दूर ले जाती। तपस्या में बैठेंगे, साधना में बैठेंगे तो भी वो बातें नीचे ले आएगी। समझो आपका बच्चा बड़ा हुआ, आपने शादी की, उसकी कुछ कहां ट्रांसफर हुई, वो वहां रहने के लिए परिवार सहित गया, अभी आपको फोन नहीं कर रहा है, क्या सोच चलेगा, किसको दोष देंगे? पता है, बहू को दोष देंगे कि वो उसका हो गया, देखो अभी मेरा नहीं रहा। उसको फोन करना चाहिए ना, ये भी हम आशा रखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो नए स्थान पर गया है, नए शहर में गया है, नए मकान में सेट करना होगा, बच्चों की स्कूलों में भी एडमिशन लेना होगा, नए स्टाफ के साथ ऑफिस में सेट होना होगा, ट्रैफिक इतनी है उसमें वो शायद थक भी जाता होगा, कई बातें हैं, तो वो नहीं सोचते। हम अपना ही सोचते कि मुझे फोन क्यों नहीं करता, जब वो है ही कर्जदार, टेंशन में है, तो कर्जदार से हम क्या लेने की आशा रखेंगे। ऐसे ही मैं बीमार हूं, मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाता, वो बीमार होता था तो मुझे पता पड़ता था और बिना कहे मैं हॉस्पिटल ले जाती थी, वो नहीं ले जाता है, उसको भी पता पड़ना चाहिए ना। घर में छोटे बच्चे थोड़ा तूफान आदि करते, एक दो पर गुस्सा करते, तो सोचते हम जब छोटे थे तो हम ऐसा गुस्सा नहीं करते थे, ये करते हैं। अभी वो बच्चा कहां से आया, जो भी पूर्व जन्म में जहां से भी आया होगा, सब जो टेंशन में होगा, डिप्रेशन में होगा, कुछ भी होगा, बार बार उसने गुस्सा किया होगा, वो संस्कार लेकर आया है। अभी ये नए शरीर में आपके पास आया है, तो शरीर वो सीडी प्लेयर है। सीडी क्यों, कौन सी, आत्मा। रिकॉर्डिंग किस में हुआ, आत्मा में हुआ। जो रिकॉर्डिंग हुआ है वही तो यहां बजेगा, पुराना ही बजेगा, उसकी वही रिकॉर्डिंग हुई है तो पुराना गीत ही तो बजेगा ना। दो बच्चे हैं तो कंपेयर करेंगे, ये ऐसा है, उसको सब पता पड़ता है, बहुत समझदार है, बड़ा होशियार है, और ये बुद्धू है, कुछ नहीं समझता है। एक बच्चा हो सकता कुछ अमेरिका से, न्यूयॉर्क से आया हो, दूसरा गांव से आया हो, अभी दोनों को मिलाए, दोनों सीढ़ी समान कैसे हो सकती। तो ऐसी ऐसी बातों को हम भूल करके संकल्प चलाते रहते हैं।
प्रभु का ध्यान कीजिए।
ओम शांति। दूसरा, साधना को हम क्यों महत्व देंगे? साधन निमित्त बनकर जरूर यूज करने हैं, लेकिन वो ही साइंस के साधन भविष्य में हमारे विचारों को, हमारे ओरा को देखने के, चेक करने के उपयोग में लेंगे, बनाएंगे ऐसे, अभी भी बन चुके हैं। और जब वो मापने के लिए आएंगे, चेक करने के लिए आएंगे और साधना नहीं की होगी तो सर्विस होगी या डिसर्विस? अगर की होगी तो कितनी वाह वाह प्रत्यक्षता होगी, जैसे दादी जानकी जी का वो ग्राफ बहुत अच्छा था, तो आज विश्व में सेवा हो रही। लेकिन हर एक तो दादी जानकी जैसी साधना नहीं करते, वो करनी चाहिए। एक भाई को कोई बड़ी बीमारी लगी, डॉक्टर ने ओरा मापने के लिए मशीन पर उसको ले गए और वो मशीन ऐसी थी जो बताती थी कि किस प्रकार का ओरा है। तो बीमारी का कारण उसका संस्कार बताया, ईर्ष्या। ईर्ष्या के कारण उसके आसपास जो भी हो रहा था वो फोटोग्राफी में आया। जब उसको पता पड़ा, कहा कि ईर्ष्या के कारण ये बीमारी है, वो भी के था, तो उसने सोचा कि चलो मुझे मालूम पड़ा या है मेरे में ईर्ष्या, रियलाइज किया। फिर वो 2 मास के लिए मधुबन आ गया। मधुबन आकर के उसने अपने संस्कार को खत्म करने के लिए पुरुषार्थ किया। फिर 2 मास के बाद फिर से चेक कराया तो बड़ा अच्छा हो रहा है, अर्थात ईर्ष्या खत्म हो गई। डॉक्टर ने जब ये रिपोर्ट देखी, रिजल्ट देखा, तो डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि 2 मास में उसमें ये परिवर्तन कैसे आ गया, कहाँ गया था, क्या किया उसने। उसने जब ये बताया, मैंने ये मधुवन में आकर के ये पुरुषार्थ किया, तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे वो स्थान देखना जरूर है, विजिट करनी है, कि वो कितना पावरफुल स्थान होगा जहां ये व्यक्ति का ओरा बदल गया, उसमें परिवर्तन आ गया। भविष्य में ऐसे हम योग कर रहे हैं तो मापने के लिए, चेक करने के लिए आएंगे मशीनों से। वो मशीन भी, वो भी साधन है साइंस का, लेकिन हमारी चेकिंग के लिए जब यूज होगा, अगर साधनों में ही बुद्धि रखी और साधनों में ही ऐशाराम कर लिया, साधना नहीं की, तो रिजल्ट अच्छी नहीं निकलेगी, तो बाबा की प्रत्यक्षता भी नहीं होगी। तो उन साधनों से भी बाबा की प्रत्यक्षता हमारी साधना के आधार से होगी, इसीलिए हमें साधना का भी बड़ा महत्व रखना होगा। और अंत में कोई साधन काम आने नहीं है, बाबा के महावाक्य है, सब साधन बेकार हो जाएंगे, सालों पहले बाबा ने कहा है, कह के रखा है, कार है लेकिन बेकार। मधुवन अंत में आना है तो कैसे आएंगे? ट्रेन भी नहीं चलेगी तो पैदल। पैदल चलने की आदत नहीं है, लेकिन पहले दिन कहा था आबू रोड से पैदल चले जाएंगे, अहमदाबाद से पैदल आएंगे तो भी थकावट नहीं लगेगी। क्यों? देह बांध से परे होंगे, बाबा की याद में होंगे, तो देह को थकावट नहीं महसूस होगी, वो बाबा की याद में मस्त होकर चलेंगे। बुद्धि देह में नहीं होगी, लेकिन वो कब? जब आगे ऐसा अभ्यास किया होगा, साधना की होगी, तब। तो साधन नहीं चलेंगे तो हमें चलना होगा, टेलीफोन से मैसेज नहीं आएगा तो बाबा की टचिंग, राइट टचिंग कब होगी? क्योंकि कहते हैं वायरलेस सेट बेकार हो जाएंगे, तो वॉइसलेस सेट हमारा जितना पावरफुल होगा, जितने हम क्लीन होंगे, निर्विकारी होंगे, शुद्ध होंगे, समय पर हमें बाबा की राइट टचिंग होगी। फोन तो बंद है, मोबाइल बंद है, कुछ मैसेज देने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो साधना समय पर हमें यथा टचिंग करेगी। इसलिए साधन होते हुए भी, साधन का यूज करते हुए भी हम उन साधनों की सिद्धियां, वो सिद्धि के रूप में साधन भी मिलेंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारा योग पावरफुल होता जाएगा, जिसके फल स्वरूप साधनों की सिद्धि, साधनों की संपन्नता भी होती जाएगी। लेकिन ये बड़ी महीन बात है, बड़ी ध्यान अटेंशन देने की बात है, सावधानी रखने की बात है, कहां हम उसमें फंस न जाए। अब देखेंगे कि चाहे लौकिक परिवार में आप रहते हो, चाहे बाबा का अलौकिक परिवार है, घर है, दोनों में देखो तो जब से आप बाबा के बने हो, कईयों को देखा है कि पहले सेंटर पर चलकर आते थे, फिर साइकिल लेकर के आने लगे, फिर स्कूटर लेकर के आने लगे, फिर गाड़ियां। लगभग कोई गरीब हो गया ऐसा नहीं सोचा, ऐसा नहीं देखा है। साधना से साधन भी खींच कर आ जाते हैं। मधुवन में भी पहले क्या था? कुछ नहीं था, आज कितना साधन, सब देखने के लिए आते, सोलार क्या है, इतनी बड़ी ये प्लेटें लगाई है, क्या है, इतना अच्छा किचन बन गया, उसमें सब ऑटोमेटिक हो जाता है, देखने के लिए आते हैं साधन। तो संगम युग में भी हम साधना से धीरे धीरे साधन संपन्न होते गए, और भविष्य में भी सतयुग में जो भी साधन संपत्ति आदि होगी उसका आधार क्या है? संगम युग की साधना ही तो है। नर से नारायण बने कैसे? साधना से बने। हमें साधन जुटाने में बुद्धि नहीं लगानी है, कैसे इकट्ठा करें, फलाने के पास है, मेरे पास भी आना चाहिए, होना चाहिए, इससे अच्छा होना चाहिए। एक गाड़ी है, समझो मारुति कार है, तो कहेंगे मर्सिडीज चाहिए, क्योंकि दूसरे की देखी और हमको भी होता है ये अच्छा है, स्टेटस सिंबल, गाड़ी कोई भी हो, लेकिन ऐसे हम उसमें फंस न जाए। हम भौतिकता से संपन्न होते हैं, साथ साथ आध्यात्मिकता से भी संपन्न हो, बैलेंस, साधन और साधना का बैलेंस, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, भौतिकता और आध्यात्मिकता का बैलेंस। तीसरा क्या कहेंगे बैलेंस, कौन सा सुनाएंगे? उपकरण और अंतःकरण का बैलेंस। उपकरणों का विकास हो रहा है, अंतःकरण का विकास नहीं हो रहा है। और इसीलिए आज दुनिया में जो भी गड़बड़ है, इम्बैलेंस है, कारण यही है। हम चाहते हैं जैसे खुशी, शांति, मेहनत करते हैं, एक हमने बना दिया है अपने रीति से कि धन और साधन से हमें खुशी मिलेगी, धन और साधन से खुशी मिलेगी, तो हम धन जुटाने में लग जाते, मेहनत करेंगे पूरी, धन और साधन, अच्छा पढ़ेंगे, जॉब अच्छी मिलेगी, सैलरी अच्छी होगी, आजकल पैकेज आता है वो अच्छा होगा, जिससे अच्छे अच्छे साधन भी ला सकते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि खुशी तो नहीं मिली, लेकिन ये तो हमने सोचा था, हमारी मान्यता थी। धन की, साधन की लिमिटेशन होती है। सोफा लाएंगे, आराम से बैठ सकेंगे, आराम से डनलॉप पर सो सकेंगे, लेकिन एक तो लिखा नहीं है सोफे के पीछे कि सोफे के साथ आपके पास, आपके घर में खुशी भी आएगी। मोटर कार के ऊपर लिखा नहीं है कि खुशी भी आएगी, लिखा है कभी? मकान के ऊपर लिखा नहीं है, ये हमने मान लिया था। जिसके लिए मेहनत की वो चीज जरूर प्राप्त होगी, लेकिन मेहनत एक करो और दूसरी चीज प्राप्त हो, ये तो कभी नहीं हो सकता। जिसके लिए मेहनत की वही प्राप्त होगी। हमने खुशी लिए मेहनत की, खुशी के लिए जो सोचा वो रॉन्ग था, वो राइट नहीं था, वो हमारी मान्यता थी, हमारी क्रिएशन है वो। समझो आपके मकान के आगे एक बगीचा है, पीछे एक बगीचा है। आप आगे के बगीचे पर मेहनत करेंगे, पीछे का तैयार होगा? आगे का समझो भौतिक बगीचा है, पीछे का है आध्यात्मिक बगीचा। अभी उसमें तो पूरी मेहनत लगाई, पूरा अटेंशन दिया, क्योंकि जहां अटेंशन देते हैं वहां शक्ति फ्लो होती है, हमारी सारी शक्ति वहां जाती है। तो हमारी पूरी शक्ति लगा करके हमने वो तैयार किया, लेकिन पीछे की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया, तो पीछे के स्थान पर क्या होगा? घास फूस उगेगी, कांटे उगेंगे, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि हमने कुछ मेहनत नहीं की है। अभी जब पीछे के बगीचे में मेहनत नहीं की, कुछ नहीं वहां तैयार किया, और समझो आवश्यकता पर वहां गए, तो ये कांटे ही मिलेंगे, निराशा, उदासीनता, टेंशन, ये सारा ही वहां उगा है, वही चीजें है, तो वही मिलेगी। इसलिए जरूरत क्या है? दोनों बगीचे के प्रति हमें अटेंशन देना चाहिए। हो सकता है पीछे के बगीचे पर आपने ज्यादा अटेंशन दिया होता तो आगे का बगीचे में शायद न भी हो तो भी चल सकता। सोने के लिए भल डनलॉप न होगा, जमीन पर भी सोकर आप खुश रह सकते हो, है ना? ऐसा जैसे आगे का झोपड़ी में रहकर भी महल अनुभव कर सकते हो। अगर पीछे का बगीचा अच्छा है तो, हमारा आध्यात्मिक बगीचा भरपूर है तो, समझ में आता है? तो कौन से बगीचे पर ध्यान, हमारा फोकस कहाँ रहेगा? भौतिक साधनों की ओर या साधना की ओर? यहाँ तो बोलते हो, फिर इसलिए साधना वो हमारा संगम युग का बहुत बड़ा खजाना है। साधना से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। साधना क्या करनी है? सदा खुश रहना है, सदा शक्ति संपन्न रहना है, कोई भी परिस्थिति आए हमें हिलना नहीं है। जैसे कल्प वृक्ष जड़जड़ीभूत हो गया है, उसके ऊपर जाकर कोई बैठेगा तो हिलता रहेगा, हलचल में आता रहेगा। इसलिए बाबा ने हमें कहाँ बिठा दिया? नीचे, मूल में बैठ जाओ। नीचे आ गए, अंडरग्राउंड चले जाओ। भारत में खड्डे खोद कर योगी योग साधना करते हैं, अंतर्मुखी बन जाओ। इसलिए साधना है परमधाम में जाकर बैठ जाओ, आना जाना करते रहो। आने जाने में क्या होगा, कहां लगाव नहीं होगा, क्योंकि एक स्थान पर नहीं हो, आना जाना करते रहते हो, और उससे साधना से मन बड़ा शांत रहेगा, बुद्धि से समय पर यथार्थ निर्णय ले सकेंगे, राइट निर्णय, और पुरानी जो प्रिंट है, संस्कार है, वो खत्म हो जाएंगे। तो शांत मन क्या करेगा, बाबा से शक्ति लेगा, शक्ति लेकर माइट लेकर वो लाइट रहेगा, और लाइट रहकर राइट कर्म करेगा, समझा, लाइट माइट एंड राइट। फीलिंग का फ्लू कभी नहीं आएगा, इन्फेक्शन नहीं लगेगा, साधना से ऐसा वो पावरफुल वातावरण बनाएगा जो किसी का इन्फेक्शन, बीमारी का इन्फेक्शन नहीं लगेगा। जो होना होगा यथार्थ होगा वही संकल्प उठेंगे, बहुत ही सूक्ष्म बात है, और ये बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसे जीवन बन जाए। जरूरी है, यथार्थ है, वही संकल्प उठेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेगी, सामने से ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। साधना हमारी वो नहीं कि सेवा को छोड़कर या आपकी प्रवृत्ति को छोड़कर बैठ जाए एक स्थान पर एकांत में, वो नहीं। पहले 10 के बीच कार्य करते थे, अभी 10 गुना कार्य बढ़ जाएगा, 1000 के बीच रहकर सेवा करनी है और साधना भी करनी है। सेवा तो बढ़ती है दिन प्रतिदिन, कम होती है क्या? तो कहेंगे ये कैसे होगा, सेवा भी करो और साधना भी करो। सेवा में क्या है, सारा विस्तार है, मन बुद्धि को फैलाना है, सोचना है ये करना है, कैसे करना है, क्या करना है, छोटी सी बात भी नहीं रह जाए। और साधना क्या है, समेट कर बैठ जाना है, ये दोनों में इतना अंतर है। ये भी एक बहुत बड़ी कला है जो बाबा सिखाते, जब चाहो तो विस्तार में बुद्धि को ले जाओ, जब चाहो तो सार में आ जाओ। ये भी हमें साधना से ये शक्ति या ये कला प्राप्त होगी, और साधना में तो बहुत कुछ वैरायटी बाबा देते रहते, जैसे आज भी फरिश्तापन की स्थिति को बाबा ने बहुत स्पष्ट रीति से गीताबेन द्वारा स्पष्ट किया। यही साधना करनी है, साइंस के जो साधन है उसको हम आध्यात्मिक रूप से यूज करें। बल रॉकेट एरोप्लेन में न बैठे, कहां भी जाना है तो बाबा ने अंतवाक्षरी दे दिया, चलते जाओ, चक्कर लगाते जाओ, सारे विश्व पर घूमते रहो। अंधकार होगा, आप लाइट के शरीर वाले पहुंच गए, बहुत अंधकार है और कहां पावरफुल प्रकाश होता है तो नजर वहां जाएगी, आंख खुल जाएगी क्या है, क्योंकि आंखें बल बंद है तो भी वो बहुत प्रकाश है तो खुल जाएगी। तो सब जगह लाइट ही लाइट के फरिश्ते दिखाई देंगे, जैसे कहा भक्तों को बड़ी प्राप्ति है, भावना है कि मुझे मेरे इष्ट देव व देवी दर्शन दे, सामने आ जाए, दूर के दृश्य, दूर की आवाज, साइलेंस पावर से हम भक्तों के सन्मुख उनको अनुभव करा सकते कि मुझे कोई मिल कर गया, मुझे वरदान दे कर गया। लेकिन ये भक्तों की इच्छा पूर्ण करने का आधार हमारी भावना कितनी तीव्र है, हमारी कितनी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति है, अर्थात हम कितने मास्टर बीज रूप बने हैं। मास्टर बीज रूप माना संपन्न, शक्तिशाली। जब तक बीज से कनेक्शन नहीं होगा तो सूखे पत्ते हरे भरे कैसे होंगे, भक्त तो सूखे पत्ते हैं, उनको हरा भरा करना है तो हमें मास्टर बीज रूप इच्छा मात्रम अविद्या संपन्न संतुष्ट, और संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। तो अंतवाहक शरीर बाबा ने विमान दिया है, दिव्य बुद्धि के विमान में घूमते रहो, चक्कर लगाते रहो। कहते हैं रहम नहीं आता, भक्त रड़िया लगा रहा है कि आओ आओ, आवाहन कर रहे हैं, आवाज सुनाई देता है, घंटे बजा रहे हैं, सुनाई देता है, वह सोए हुए हैं या अपनी अपनी प्रवृत्ति में व्यस्त है। जैसे लोगों को ज्ञान सुनने का समय नहीं, वैसे ब्राह्मणों को साधना से भक्तों की इच्छा पूर्ण करने का समय नहीं। कब करें? समय ही नहीं है, हम कैसे कब साधना करें? इसलिए अभी पावरफुल शांति के चुंबक बने जो दूर दूर से अशांत आत्माओं को खिंचाव हो, अपने आप खींच कर आ जाए। हमारे संकल्प शांत हो, बोल शांति के हो, हर कर्म शांति के हो, शांत स्वरूप हो करके करे। हर स्थान, हर एक अपने अपने स्थान को, परिवार को, घर को क्या बना दे, शांति कुंड बना दे या शांति के चुंबक बना दे। तो ये है साधना, जो समय वर्तमान जो चल रहा है अति आवश्यक है। और अभी ये नहीं करेंगे, जब साधन नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? हम छटपटा रहेंगे, हम दुखी हो जाएंगे। हाँ, लंबे समय का अभ्यास चाहिए, अपने संपूर्ण स्वरूप को भी हम ज्यादा समय अपने इस स्वरूप को संपूर्ण स्वरूप में समाते जाए। बल बने नहीं है, लेकिन हम दरे हर एक का संपूर्ण स्वरूप है, जैसे ब्रह्मा बाबा का था, हम उसमें समाते जाए। तो लंबे समय का अभ्यास, उसको साधना कहो, तपस्या कहो, और वो साधनों के आधार पर न रहे, ये हमारा लक्ष्य हो। किसी व्यक्ति के आधार से न हो, हम कहेंगे फलानी व्यक्ति से मेरी नहीं बनती, मैं वहां जाऊंगा तो फलाना वैभव वस्तु स्थान साधन होगा या नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अगर सब बाह्य आधार लेकर चलेंगे तो साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी आधारों से मुक्त होकर आत्मा को स्वतंत्र बना दो, और हमारी जो ओरिजिनल गुण है उसको हम अनकंडीशनली यूज करें। चॉइस नहीं करना है, करे या नहीं करे, फलाना ऐसा करता है तो मुझे क्या करना है, करूं या नहीं करूं, वो नहीं करता है तो ये नहीं, करे तो नहीं, अनकंडीशनली, कंडीशन पर यूज करना नहीं। वो तो सब करते हैं, कोई अच्छा चलता उसके साथ अच्छा तो सब चलते हैं, नहीं चलता है तो भी मुझे अपने ओरिजिनल गुणों से ही चलना है, व्यवहार में आना है, ये साधना करनी है, तब हम संपूर्णता पर पहुंचेंगे। हमें स्वयं को देखना है, हम सामने वाले को देखते हैं इसीलिए फेल हो जाते, क्योंकि उसने ऐसा किया तो भाई हम भी बदल जाते, वो गलती करता हम भी गलती कर देते, उसका प्रभाव आ जाता है। इसलिए जब दूसरे को देखते स्वयं को नहीं देखते, स्वयं से अटेंशन हट जाता है, तो वो रास्ते पर जाते हैं तो लिखा हुआ होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लिखा होता है, वाहन चलाने वाले देखते हैं, हमारे पर सावधानी हटी स्वयं से दुर्घटना होगी ही। इसलिए मेडिटेशन अर्थात साधना अर्थात स्वयं का प्रोटेक्शन, समझा? मेडिटेशन अर्थात साधना अर्थात दूसरा स्वयं को, अर्थात जो शरीर मोबाइल है और आत्मा सिम है, तो सिम को एक्टिवेट करना, समझा, एक्टिवेट करना, वो है साधना। इसलिए अंदर बहुत रिकॉर्डिंग है हमारे अंदर, हाँ, 5000 साल की। अभी बाबा जो भरते हैं, हाँ, जो हम भी भरते हैं मुरली द्वारा या क्लासेस द्वारा, जो भी पुस्तक द्वारा, तो जो भरा है नया, वो नया रिकॉर्डिंग हमें चलाना है, पुराना कैंसिल करना है, वो नहीं चले, नया चले। तो हम सिम को एक्टिवेट करें और रिकॉर्डिंग हमें करना है। कैसी करनी है वो हमारे ऊपर है। तो हमारी साधना तभी सफल होगी जब हम छोटी मोटी ये सब बातों में ध्यान रखेंगे, श्रीमत को साथ रखेंगे, कर्मों की गुह्य गति को साथ में रखते हुए चलेंगे। क्योंकि जो करूंगा वो मिलेगा, जितना करूंगा उतना मिलेगा, जैसा करूंगा वैसा मिलेगा, देना ही लेना है। दुख दिया तो दुखी तो लेंगे, सुख दिया तो सुखी तो मिलेगा। इसलिए जिसके कर्म श्रेष्ठ है वो निश्चिंत होगा, उसे कोई चिंता नहीं, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, वो निर्भय होकर आगे बढ़ता रहेगा। हाँ, हो सकता है कोई हिसाब पुराना हो और वो आ जाए, इससे हम अपने श्रीमत को या श्रेष्ठ कर्म को न छोड़े, क्योंकि वो जब हिसाब पूरा होगा तो ये नया खाता अच्छे का तो शुरू होगा ना। इसलिए वर्तमान के आधार से हमारा भविष्य बनेगा, और साधना अच्छी होगी, हम शक्तिशाली साधना से होंगे, तभी हम विपरीत परिस्थितियों में राइट चल सकेंगे। इसलिए साधन के साथ साथ, बाबा ये नहीं कहते साधन यूज नहीं करो, लेकिन साधन को निमित्त मात्र यूज करो और साधना को महत्व देते हुए, बैलेंस रखते हुए हम खुद की ब्लिसफुल लाइफ बनाएंगे, आनंदमय जीवन होगा और सर्व की ब्लेसिंग लेते जाएंगे। सर्व की ब्लेसिंग ही हमें उड़ाएगी। अगर किसी की बद दुआ, वो हमें विघ्न रूप बनेगी। इसलिए दुआओं का खाता जमा करते जाएं और उड़ते जाएं। ओम शांति।